नमस्ते, मैं आराफ हूँ। नाइना ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। स्टीफन स्मिथ की पुस्तक प्रोग्रामिंग विद 64 बिट आर्म असेंबली लैंग्वेज एक व्यावहारिक तकनीकी मार्गदर्शिका है, जिसका केंद्र आर्म के 64 बिट परिवेश में निम्न स्तर की प्रोग्रामिंग है। यह पुस्तक उन डेवलपर्स के लिए लिखी गई है जो पाइथन, सी, जावा या अन्य उच्च स्तरीय भाषाओं का अनुभव रखते हैं और यह समझना चाहते हैं कि आर्म आधारित मशीन निर्देशों, रजिस्टरों और मेमोरी के स्तर पर कैसे काम करती है। इसका दायरा केवल सिंटैक्स सिखाने तक सीमित नहीं है। इसमें रास्पबेरी पाई और एनविडिया जैक्सन नैनो जैसे सिंगल बोर्ड कंप्यूटरों पर 64 बिट लिनक्स प्रोग्राम बनाना, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करना, GPIO हार्डवेयर से संवाद करना तथा सी और पाइथन के साथ असेंबली को जोड़ना शामिल है। पुस्तक iOS और 64 बिट आर्म एंड्रॉइड उपकरणों के लक्ष्यीकरण का भी परिचय देती है। इसका प्रमुख उद्देश्य पाठक को उदाहरणों पर निर्भर रखने के बजाय आधिकारिक आर्म संदर्भ दस्तावेज पढ़ने और अपने उपकरण के सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर व्यवहार को समझने योग्य बनाना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले 64 बिट आर्म वास्तुकला और असेंबली निर्देशों की आधारभूत समझ। पुस्तक का पहला महत्वपूर्ण पक्ष 64 बिट आर्म वास्तुकला को प्रोग्रामिंग के दृष्टिकोण से समझाना है। असेंबली सीखते समय केवल निर्देशों के नाम याद कर लेना पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि हर निर्देश रजिस्टर, डेटा की चौड़ाई, मेमोरी पता और नियंत्रण प्रवाह के साथ जुड़ा होता है। पुस्तक आर्म प्रोसेसर के 64 बिट मोड में उपलब्ध निर्देश समूहों और कंप्यूटर मेमोरी में डेटा के संगठन पर ध्यान देती है। इससे पाठक यह समझ सकता है कि उच्च स्तरीय भाषा में लिखा साधारण गणना, तुलना, शाखा या फंक्शन कॉल अंततः मशीन स्तर पर किन क्रियाओं में बदलता है। 64 बिट परिवेश में पते और रजिस्टर बड़े होते हैं, इसलिए डेटा प्रकारों, पॉइंटरों और मेमोरी पहुंच को लेकर सावधानी आवश्यक है। यह विषय विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि आर्म 64 बिट निर्देश समुच्चय को पुराने 32 बिट आर्म मॉडल का मामूली विस्तार मानना भ्रामक हो सकता है। पुस्तक का लक्ष्य उस अंतर को व्यावहारिक रूप में स्पष्ट करना है। निर्देशों को मेमोरी संगठन और नियंत्रण प्रवाह के साथ पढ़ाने से पाठक प्रोग्राम के परिणाम के साथ उसके निष्पादन की प्रक्रिया भी समझता है। यही आधार बाद के सिस्टम कॉल, अनुकूलन और मशीन कोड विश्लेषण वाले अध्यायों को अर्थपूर्ण बनाता है। दूसरा, रास्पबेरी पाई और जैक्सन नैनो पर 64 बिट लिनक्स विकास। यह पुस्तक आर्म असेंबली को एक अमूर्त सिद्धांत के रूप में नहीं रखती, बल्कि उसे सिंगल बोर्ड कंप्यूटरों पर चलने वाले वास्तविक प्रोग्रामों से जोड़ती है। रास्पबेरी पाई और एनविडिया जैक्सन नैनो जैसे उपकरण किफायती आर्म प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं, जहां पाठक सीधे कोड लिखकर, असेंबल करके और उसका व्यवहार देख सकता है। पुस्तक के संदर्भ में 64 बिट लिनक्स महत्वपूर्ण है क्योंकि निष्पादन योग्य फाइलों, सिस्टम इंटरफेस और टूलचेन का व्यवहार उसी वातावरण से तय होता है। इस दृष्टिकोण का लाभ यह है कि पाठक डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम और एम्बेडेड हार्डवेयर के बीच की दूरी को कम कर पाता है। वह केवल प्रोसेसर निर्देश नहीं देखता, बल्कि यह भी सीखता है कि वे लिनक्स प्रक्रिया के भीतर कैसे चलते हैं। सिंगल बोर्ड कंप्यूटर प्रयोग के लिए सुविधाजनक है, पर वे सामान्य पीसी से अलग इनपुट आउटपुट क्षमताएं भी देते हैं, इसलिए पुस्तक का प्लेटफॉर्म केंद्रित ढांचा शिक्षण को ठोस बनाता है। यह उन पाठकों के लिए उपयोगी है जो अपने विकास परिवेश को समझना चाहते हैं, ना कि केवल किसी ऑनलाइन असेंबलर में छोटे उदाहरण चलाना चाहते हैं। हालांकि अलग बोर्डों और लिनक्स वितरणों में स्थापना तथा उपकरण विन्यास बदल सकते हैं। पुस्तक की मूल तकनीकें आम 64 बिट लिनक्स के व्यापक संदर्भ में लागू रहती है। तीसरा, असेंबली से ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल और बाहरी लाइब्रेरी का उपयोग। निम्न स्तर का प्रोग्राम उपयोगी तभी बनता है जब वह ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं तक पहुंच सके। पुस्तक असेंबली भाषा से ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करने और परियोजनाओं में अन्य सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी शामिल करने को एक प्रमुख व्यावहारिक कौशल के रूप में रखती है। इसका अर्थ है कि पाठक केवल रजिस्टरों में गणना करने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि फाइल, इनपुट आउटपुट प्रक्रिया और अन्य प्रणाली संसाधनों के साथ संबंध बनाना सीखता है। उच्च स्तरीय भाषाएं इन कामों को सुविधाजनक फंक्शन के पीछे छिपा देती है, जबकि असेंबली में कॉलिंग नियम, तर्कों की स्थिति और परिणामों के प्रबंधन को अधिक स्पष्टता से समझना पड़ता है। यह स्पष्टता सिस्टम स्तर की त्रुटियों को पढ़ने और प्रदर्शन संबंधी निर्णयों को समझने में मदद करती है। पुस्तक का यह भाग यह भी दिखाता है कि असेंबली को पूरी परियोजना की एकमात्र भाषा मानना जरूरी नहीं है। बाहरी लाइब्रेरी और स्थापित सिस्टम सुविधाओं का उपयोग करके निम्न स्तर का कोड बड़े अनुप्रयोग का एक नियंत्रित हिस्सा बन सकता है। इस प्रकार पाठक को दो महत्वपूर्ण सीमाओं का बोध होता है, एक और सीधे हार्डवेयर निर्देशों की क्षमता, दूसरी ओर ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा तय सुरक्षा और सेवा सीमाएं। यह संतुलन वास्तविक विकास कार्य में आवश्यक है। चौथा, GPIO के माध्यम से सॉफ्टवेयर और रास्पबेरी पाई हार्डवेयर का संपर्क। पुस्तक की विशिष्टता का एक महत्वपूर्ण कारण रास्पबेरी पाई के GPIO पोर्ट जैसे हार्डवेयर इंटरफेस के साथ असेंबली अनुप्रयोगों का संपर्क है। सामान्य असेंबली पुस्तकों में उदाहरण अक्सर संख्यात्मक गणना, स्ट्रिंग या स्क्रीन आउटपुट तक सीमित रहते हैं। यहाँ सॉफ्टवेयर निर्देशों का संबंध भौतिक इनपुट और आउटपुट से बनता है। GPIO के माध्यम से प्रोग्राम बाहरी इलेक्ट्रॉनिक घटकों के संकेत पढ़ या नियंत्रित कर सकता है, इसलिए रजिस्टर, मेमोरी और बिट संचालन का व्यावहारिक अर्थ अधिक प्रत्यक्ष हो जाता है। इस विषय का मूल्य केवल किसी एक उपकरण को चलाने में नहीं है, यह बताता है कि हार्डवेयर नियंत्रण में समय, पिन विन्यास, डेटा दिशा और सुरक्षित इंटरफेस जैसे विचार क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। असेंबली स्तर पर काम करने से पाठक को यह भी समझ आता है कि सुविधाजनक लाइब्रेरी के पीछे किस तरह की निम्न स्तर की क्रियाएं हो सकती है। पुस्तक इस क्षमता को रास्पबेरी पाई केंद्रित उदाहरण से प्रस्तुत करती है, इसलिए यह शुद्ध भाषा, संदर्भ और एम्बेडेड प्रोग्रामिंग मार्गदर्शिका के बीच पुल का काम करती है। फिर भी पाठक को अपने बोर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम और विद्युत संयोजन के दस्तावेज अलग से जांचने होंगे, क्योंकि हार्डवेयर विन्यास और सुरक्षा आवश्यकताएं उपकरण के अनुसार बदलती हैं। अंत में, सी और पाइथन अंतर संचालन, अनुकूलन और मशीन कोड विश्लेषण। पुस्तक असेंबली को अलग थलग कौशल के बजाय मिश्रित भाषा विकास और कोड समझने के उपकरण के रूप में प्रस्तुत करती है। इसमें सी और पाइथन कोड के साथ अंतर संचालन, कोड अनुकूलन तथा मशीन कोड को पढ़ने, रिवर्स इंजीनियर करने और विश्लेषित करने के विषय शामिल है। सी के साथ संबंध विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनेक सिस्टम परियोजनाएं सी में लिखी जाती है और केवल प्रदर्शन संवेदनशील या हार्डवेयर निकट भाग असेंबली में बनाए जाते हैं। पाइथन के साथ संबंध यह दिखाता है कि उच्च उत्पादकता वाली भाषा और निम्न स्तर के रूटीन एक ही परियोजना में अलग भूमिकाएं निभा सकते हैं। अनुकूलन के संदर्भ में पुस्तक का संकेत यह है कि बेहतर प्रदर्शन केवल ज्यादा तेज निर्देश चुनने का नाम नहीं है। डेटा, मेमोरी पहुंच, कॉलिंग लागत और वास्तविक बाधा को समझे बिना किया गया सूक्ष्म अनुकूलन अनुपयोगी हो सकता है। मशीन कोड पढ़ने और रिवर्स इंजीनियरिंग का परिचय पाठक को संकलित प्रोग्रामों की जांच के लिए आवश्यक दृष्टि देता है। इसका उपयोग वैध अध्ययन, डिबगिंग और अपने कोड के व्यवहार को समझने में किया जाना चाहिए। आधिकारिक आर्म संदर्भ दस्तावेज के उपयोग पर जोर इस विषय को स्थायी बनाता है, क्योंकि निर्देशों की सटीक शर्तें और प्रभाव अनुमान से नहीं, प्राथमिक तकनीकी दस्तावेज से सत्यापित किए जाते हैं। निष्कर्ष में, प्रोग्रामिंग विद 64-बिट आर्म असेंबली लैंग्वेज उन डेवलपर्स के लिए उपयुक्त है जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग का अनुभव रखते हैं और आर्म आधारित कंप्यूटिंग के नीचे काम करने वाली परतों को व्यवस्थित ढंग से समझना चाहते हैं, विशेष रूप से रास्पबेरी पाई या जैक्सन नैनो रखने वाले विद्यार्थी, मेकर, एम्बेडेड सिस्टम रुचि रखने वाले प्रोग्रामर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के विद्यार्थी इससे व्यावहारिक लाभ पा सकते हैं। पाठक को रजिस्टर, मेमोरी, निर्देश, सिस्टम कॉल और हार्डवेयर इंटरफेस के संबंध की ठोस समझ मिल सकती है। साथ ही सी या पाइथन जैसी भाषाओं को छोड़ने के बजाय उनके साथ असेंबली का सीमित और उद्देश्यपूर्ण उपयोग करने का दृष्टिकोण मिलता है। पुस्तक की अलग पहचान इसका बहुस्तरीय दायरा है। कई असेंबली पुस्तकें केवल भाषा के नियमों या केवल एक डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म पर केंद्रित रहती है। इसके विपरीत यह 64-बिट आर्म निर्देशों को लिनक्स आधारित सिंगल बोर्ड कंप्यूटर, GPIO हार्डवेयर, मोबाइल आर्म लक्ष्यीकरण, अनुकूलन और मशीन कोड विश्लेषण से जोड़ती है। आधिकारिक आर्म दस्तावेज पढ़ने की तैयारी पर इसका जोर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पाठक बदलते उपकरणों और नई समस्याओं के लिए स्वतंत्र रूप से सीख सकता है। हालांकि यह पूर्ण शुरुआती प्रोग्रामिंग पाठ्यक्रम नहीं है और हार्डवेयर प्रयोग में अतिरिक्त सावधानी चाहिए, फिर भी आर्म असेंबली को वास्तविक उपकरणों पर लागू करने के लिए इसका व्यावहारिक संतुलन इसे उपयोगी बनाता है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं स्टीवन स्मिथ, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।